खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदा के फजल से ठीक होंगे। शुक्रिया बड़ी दूर से सफ़र करके आने के लिए, क्योंकि जिंदगी की बहुत सी मसरूफियात में बहुत दफ़ा कम वक्त मिलता है कि वक्त निकाला जाए, और आपका आना इस बात का इजहार है कि आप वाकई ही खुदा के कलाम को सीखने की क्या रखते हैं जी, भूख और प्यास रखते हैं। सो इसलिए आप सबके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि आप इतनी इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं। हमारे दरमियान बहुत से मुख्तलिफ इलाकों से खुदा के खादम आए हैं, और हर एक को खुदा ने मुख्तलिफ क्या है जी, बुलावे से बुलाया है। जैसे आप पाकिस्तान में से मुख्तलिफ शहरों में से इकट्ठे हुए हैं, हमारे दरमियान पास्टर दानियल जो कि अमरीका से यहाँ पर आए हैं, किस लिए? ताकि जो भूखे खुदा के कलाम की प्यास रखते हैं उन तक क्या पहुंचाया जाए, खुदा का कलाम पहुंचाया जाए। और जिस किताब को, जिस टॉपिक को आज हम शुरू करने वाले हैं, इसके पीछे मैंने बड़ी मेहनत की है, और मेरी ये दुआ है कि सारी मेहनत को खुदावन खुदा क्या करे जी, आज आप सबकी रूहानी तरक्की के लिए क्या करे जी, इस्तेमाल करे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बड़ा ही जबरदस्त खजाना है, बाइबल मुकद्दस बहुत ही जबरदस्त क्या है जी, सच्चाई है। जितना ज्यादा हम खुदावन यीशु मसीह के साथ गहरी कुर्बत को रखेंगे, उतना ही ज्यादा उसकी पहचान, उसकी आदतों और उसके रवैये को क्या करेंगे जी, अपनाएंगे। पंजाबी की बड़ी सी सादा सी क्या है जी, मिसाल है, खरबूजा खरबूजे को देखकर क्या पकड़ता है जी, रंग पकड़ता है। और पौलुस रसूल ने बड़े वाज़ह तौर पर कहा है, जैसे मैं मसीह की मानद बना हूं, तुम भी मसीह की मानद बनो, सब मेरी मानद बनो, वो यहां तक कहता है। ये बड़ी क्या है जी, जबरदस्त स्टेटमेंट बयान है कि कोई किसी को कहे कि भाई मेरी मानद बनो। सो इसलिए हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं खुदा के कलाम का मुतालिया करने के लिए। सो आए हम दुआ से शुरू करेंगे। वी आर हेयर टू स्टडी गॉड्स वर्ड एंड वी विल ओपन अप विद द वर्ड ऑफ गॉड एस्किंग हिज ब्लेसिंग, कि खुदा के कलाम की बरकत को चाहेंगे कि वो हम सब के लिए बाय से बरकत हो। सो आए लेट अस प्रे। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा मसीह यीशु में, हमारे आसमानी बगैर पाप, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं, क्योंकि तूने अपने कलाम में कहा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी कर नहीं सकते। खुदावन्द तूने अपने बंदा दाऊद के वसीला से कहा कि मुझ में मसरूर रह तो मैं तुम्हारे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। खुदावन्द हम सब यहां पर इकट्ठे हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों से, गांवों से, सरहदों से यहां पर इसीलिए आए हैं कि तेरे कलाम के आईने में वो सूरत, वो शबी जिस पर तूने हमें बनाया है उस पर ढल सके। ए बाप, आज के सारे खुदा खुदा इस माहौल को, खूबसूरत प्रस्तुति के लिए जो की गई है, तेरा शुक्र करता हूं। अब खुदावन्द जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए, जब बीज बोने वाला निकले, तो खुदा का पाक रूह हर दिल की जमीन को सरखेज करे। और खुदा बाप, जो अभी तक हमारे भाई, हम खिदमत, जो नए खादम हैं, जो बहुत पहले से हमें जानते हैं, जो आने वाले हैं, जो रास्तों में, उनकी हिफाजत तो निगेबानी कर, ताकि खुदावंद आज की शाम सारा जलाल हमको नहीं खुदावंद, हमको नहीं खुदावंद, तेरे ही नाम को जलाल मिले। ये सब कुछ मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आज हम क्या करेंगे जी, इफ़सियों के खत का मुतालिया करेंगे। क्या करेंगे जी, इफ़सियों के खत का मुतालिया करेंगे। लेकिन इफ़सियों का खत शुरू करने से पहले याद दिलाना चाहता हूं, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बहुत जरूरी है कि पढ़ने वाले की हम ख्वाहिश को, उसकी तमन्ना को, उस के लिखने के मकसद को जाने के वो क्यों लिखा गया है। सो मैं मुख्तसर तौर पर चाहता हूं कि इससे पहले कि हम इफ़सियों के खत का मुतालिया करें, जो कि छह बाबों पर क्या है जी, मुश्तमिल है, जो छह बापों पर मुश्तमिल है, इन छह बापों में बाइबल मुकद्दस की वो अल्लाही तालीम हमें मिलती है जो क्या है जी, हमें हला कर रख देती है और हमें हमारी साथ, हमारी पहचान और हमारा मकाम बयान करती है कि हम कौन हैं। सो इससे पहले कि हम छह बापों का मुतालिया करें, अगर हम पीछे चले जाएं पुराने अहदनामा में, क्योंकि बाइबल मुकद्दस क्या है जी, 66 किताबों का मजमुआ है, ये खुदा की सांस है, ये खुदा का इल्हाम है, ये खुदा की क्या है जी, मुंह की बातें हैं। पुराना अहदनामा नामुमकिन है कि उसे समझा जाए जब तक हम पुराने अहदनामे की झलक नहीं देख लेते कि उसमें क्या कहा गया है। इसलिए पुराने को समझने के लिए क्या करना है जी, नए में देखना होगा और नए को समझने के लिए पुराने में देखना होगा। ये ऐसी ही बात है कि कोई मैं क्या है जी, पुरानी मशकों में नहीं भरता, नई मैं नई मशकों में भरते हैं। सो जब हम समझना चाहते हैं पुराने अहदनामे को, तो हमें क्या है जी, नए अहदनामा में देखना होगा कि इसके पीछे वजह क्या थी। सो इसलिए इससे पहले कि पालूस रसूल की हम इस तहरीर को, जो इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत है, समझें, पुराने अहदनामा में जाएंगे और जबूर एक में इसका पूरा खुलासा देखेंगे। सो मेरे साथ निकाले जबूर की किताब, जबूर की किताब निकालें और जबूर की किताब में से हम देखेंगे जो पहली आयत है वो क्या है, मुबारक है वो दयानतदार आदमी या औरत जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठेबाजों की मजलस में नहीं बैठता। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जब हम जबूर एक को देखते हैं तो इसकी कुल कितनी आयात है जी, 6 आयात है। इन 6 आयात को जब हम तकसीम करते हैं तो क्या मिलता है जी, इनको 3 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि मुशाहदे से हमें पता चलता है कि बहुत से फिक्रे, तर्ज़े कलाम, अंदाज़े बयान जबूर एक की जो 6 आयात हैं, इफ़सियों 6 बाब की क्या है जी, खत के दरमियान क्या है जी, बड़ा ही मिलता जुलता कनेक्शन पाया जाता है। और जबूर नवीस हमें सिखाता है जबूर एक में दयानतदार और शरीर के दरमियान फर्क के बारे में कि इसका मतलब क्या है। और इफ़सियों और जबूर को जब हम देखते हैं जबूर एक को, तो उसको हम कितने हिस्सों में कर सकते हैं तकसीम जी, 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इफ़सियों के 6 खत, 6 बाप हैं जो हमें सिखाते हैं, उसमें कौन कौन सा हमें सबक मिलता है जी, बैठना, चलना, खड़े होना के बारे में तालीम मिलती है। ये बड़ा सादा सा असूल हमें नजर आता है। जरा हम जब जाते हैं, जरा पीछे चले जी, हम 3 बातों को सीखते हैं इफ़सियों के 6 बापों में, वो क्या है जी, बैठना, चलना और खड़े होना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, आगे चलकर देखेंगे, सिट, वॉक, स्टैंड। लेकिन जबूर एक में जब हम इसका तरीका देखते हैं, वहां पर ही रहे जी, पीछे ही, थैंक यू। जबूर एक को जब देखते हैं, उसकी एक आयत में कैसे शुरुआत करता है खुदा का बंदा, चलना, खड़ा होना, बैठना होने के बारे में क्या करता है जी, तालीम देता है। जब हम पालूस को देखते हैं तो वो हमारी शुरुआत करता है नई पदेश से और आगे चलता है कि नई पदेश से शुरू करके नूर में चलने से और दूर में चलने से आगे वो कहां पर लेकर जाता है जी, हमारा मुकाम उस रूहानी जंग में क्या है जी, कायम होना, खड़े होना। सो 6 बाप को देखते हैं, उसके 6 बाप का पूरा खुलासा 3 बातों में पाया जाता है, बड़ी सादा है लेकिन बड़ी गहरी है, बैठना, चलना और खड़े होना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिट, वॉक, स्टैंड। और जबूर को जब देखते हैं तो जबूर क्या सिखाता है, शुरुआत करता है चलना से और उसके बाद फिर खड़ा होना से और फिर बैठने से। सो जबूर एक की एक आयत क्या है जी, इफ़सियों के खत का पूरा क्या है जी, खुलासा है। जबूर का जो मुसन्नफ कहता है वो क्या कहता है जी, कि खुदा के पैरोकारों की जिंदगी को जो बुलावा या तर्ज हयात या जिंदगी है या उनका अरादा या अजम है और इस जमीन पर क्या है जी अहले ईमान की शिनाख्त पहचान से क्या करता है जी वो आगाज करता है। और यह है जबूर एक का क्या है जी मुनफरद अंदाज के वो इसको शुरुआत करता है चलने से। जब हम लफ्ज चलना को देखते हैं तो अबरानी जुबान में पुराने अहदनामा में चलना क्या है जी ये बड़ा ही अहम लफ्ज है जो क्या है जी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना। चलने का तल्लक है जी एक दूसरे से रफाकत और शराकत और तल्लक रखने का। चलने से मुराद है यानी कि हमारे जीने का मकसद और तरीका हयात क्या है। और इसीलिए ज़बूर नबीस क्या कहता है मुबारक है वो बंदा जैसे से कह सकते हैं मुबारक है वो दयानदार आदमी या औरत जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। यहां पर जो लफ्ज शरीरों का अगर हम इसे लेकर चल पड़े तो पुराने अहदनामा में ये लफ्ज ना सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो शरारत के मंसूबे बांधते हैं जो शरारत की जिंदगी बसर करते हैं बल्कि ये लफ्ज किराए हुए शरारत के उन पैरोकार यानी के नाफरमान फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तो दूसरे लफ्जों में जबूर नबीस क्या कहता है शुरुआत करते हुए चलना से कि तुम्हारी जिंदगी का तरीका कार कैसा होना चाहिए कि तुम्हें किस तरह जिंदगी बसर करनी है शरीरों की सलाह से नहीं। शरीरों की सलाह में जिंदगी बसर नहीं करनी ये क्या है जी चलने से तल्लक रखता है। शरीरों के साथ तुम्हारा क्या ना हो जी ऐसा सिलसिला ना हो कि जिसमें तुम उनकी तरह क्या हो जाओ जी हो जाओ जैसे नए अहदनामा में पालूस रसूल कहता है अच्छी बुरी आदतें क्या है जी अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। और उसके बाद फिर दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करता है और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। लफ्ज जब खड़ा को देखते हैं तो पुराने अहदनामा में ये क्या है जी पुराने और नए अहदनामा में ये क्या है जी मिलिटरी जिसे कहते हैं फौजदारी का लफ्ज है जो इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए क्या किया गया है जी मैं खड़ा हूं। खड़ा होने से मुराद यानी कि मेरे खड़े होने का मेरे कायम होने का और मेरा खड़े होने का मकसद क्या है। सो चलना जिंदगी से तल्लक रखता है। पैदाइश की किताब में हमें बड़ी जबरदस्त मिसाल मिलती है हनूक खुदा के साथ कितने साल तक चलता रहा जी 365 साल तक वो क्या करता है जी चलता रहा और खुदावंद खुदा की क्या करता रहा जी इबादत और प्रस्तुति करता रहा। ये क्या है जी चलना। खड़े होना क्या है जी खड़ा होना यानी कि मेरा अकीदा मेरा मेयार मैं किस पार्टी का बंदा हूं। जब कोई स्टैंड लेता है पुराने अहदनामा में या नए अहदनामा में तो उसका मुराद क्या है जी कि मैं क्या यकीन करता हूं क्या मेरा अकीदा है क्या मेरा तर्ज हयात है। और उसमें खुदा का बंदा ज़बूर नबीस में क्या करता है खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। और खुदाकारों की राह में खड़ा होने के बाद उसका जो नजरिया है वो क्या है जी रास्तबाजों के साथ खड़े होना और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ये फिर जो लफ्ज ठट्ठाबाजों का है ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि उन रूहानी हवा की अलमदारी के उन तमाम क्या है जी पैरोकारों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो अबलीस के हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे। ये था जी तारफी खलासा जबूर नवीस का और उसके बाद जी इफ्सियों का। और इसलिए हमें जो तीन सबक मिलते हैं आगे जब हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमें खुदा के कलाम में से मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चढ़ता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। शुरुआत कहां से होती है चलना से। और चलना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं वॉक। वॉक से शुरू होता है कि हम चल कर कहां जाते हैं और चलने के पीछे क्या है जी कि अगर हम कहीं से शुरुआत करते हैं तो वो कहीं पर खत्म होने वाले सफर की तरफ क्या है जी इशारा है, इसलिए चलना है जिंदगी के तलक से। और इस चलने के पीछे जो हमें सीखने को मिलता है वो क्या है, हर मसीही का एस्तहकाक, कि हर मसीही को एक दर्जा, एक एस्तहकाक, एक प्रिविलेज दिया गया है खुदावन खुदा में, खुदावन खुदा में। इसलिए मसीही, हर मसीही का एस्तहकाक क्या है, नया अहदनामा और पुराना अहदनामा हमें सिखाता है। नया अहदनामा कहता है नूर में चलो, पुराना अहदनामा कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है जी स्टैंड। स्टैंड से मुराद है कायम रहना, खड़े होना, कायम रहना, खड़े होना, किसी बात के लिए क्या कर लेना जी, इरादा कर लेना कि मैं इसके लिए चाहे जीऊं चाहे मरूं मैं इसे नहीं टलूंगा। आपको पता होगा कि आस्तर की किताब में आस्तर के लिए ये बयान था, खा मैं मरूं या जीऊं मैं क्या करूंगी जी, खुदावन खुदा की मर्जी को पूरा करूंगी। उसके बाद रूत की किताब में हम देखते हैं रूत क्या करती है, जब अपनी सास नयोमी के साथ गुफ्तगू कर रही है, बाकी दोनों चली जाती हैं और नयोमी से, नयोमी रूथ से कहती है कि तू भी अपने कुंबे अपने खानदान में चली जा। और वो कहती है नहीं नहीं, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी। और ये क्या है जी, ईडियम है, ये बयान है जिसमें क्या है जी, जो मैंने ठान लिया है उस पर मैं खड़ी हूं, मैं कायम हूं, कोई इसे तब्दील कर नहीं सकता। सो स्टैंड क्या है जी, हर मसीही की जिम्मेदारी, हर मसीही की जिम्मेदारी है कि अपने उस अजम को, उस मकसद को जिसके लिए खुदा ने बुलाया है क्या करे जी, पूरा करे। इसलिए हमें जैसे जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह जब खड़ा होगा तो क्या करेगा जी, अदालत करेगा, हम भी जब किसी बात पर खड़े होकर कायम होकर बयान देते हैं कि जी मैं इस पर अटल हूं कि यीशु मसीह मसलूब किया गया, दफन किया गया और कब्र में उतारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उस जैसा कोई और नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं जी, आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस ट्रूथ, मैं इस सच्चाई पर कायम और दायम हूं। सो इसलिए हर मसीही की जिम्मेदारी ज़बूर नबीस बयान करता है। उसके बाद है बैठना। बैठना क्या है जी, पुराने अहदनामा में एक तालिब इल्म की तरफ इशारा है, जैसे आज आप बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं। और बैठना क्या है जी, सीखने के तल्लक से है, रफाकत के तल्लक से है। और वो कहता है तुम्हारा बैठना क्या हो जी, ठट्ठे बाजों की मजलिस ना हो बल्कि क्या हो जी, ईमानदारों की जमात हो। और बैठना क्या है जी, हर मसीही का मकाम, हर मसीही का मकाम। और इसे हम अगले हिस्से में जब देखते हैं तो दूसरे लफ्जों में जो खुलासा है वो क्या है जी, जबूर का जब हम खाका देखते हैं, जबूर एक उसकी जब छह आयात को देखते हैं तो ये तीन सच हमें मिलने सीखने को मिलते हैं। पहला क्या है जी, चलना, चलने से मुराद क्या है जी, अल्लाही तवक्को। अल्लाही तवक्को किसे कहा जाता है जी, कि यानी कि कोई बंदा किसी से तवक्को करता है कि मेरे तुम्हारे लिए ये नजरियात है या ख्वाहिशात है, या तवक्को करता हूं कि तुम ऐसा करोगी या करोगी। और जिसमें खुदा का कलाम क्या कहता है, अहले ईमान का एस्तहकाक के जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। इंग्लिश में से कहते हैं तो द वॉक इज अ डिवाइन एक्सपेक्टेशन। खुदावंद खुदा अपने घर में क्या है जी, फरिश्तों से तवक्को रखता है, नबियों से तवक्को रखता है, रसूलों से तवक्को रखता है, शिगिर्दों से तवक्को रखता है, प्रस्तारों से तवक्को रखता है। और नया नामा बड़ी खूबसूरती से क्या कहता है, खुदा ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो उसकी प्रस्तुति रूह और सच्चाई से करते हैं। ये क्या है, खुदावंत की एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन तवक्को है कि वो ये चाहता है। सो चलना क्या है, अल्लाही तवक्को है, अल्लाह ही खुदा का क्या है जी, दिल का क्या है जी, ये इजहार है कि क्या किया जाए। नए अहदनामा में से कहता है खुदा का बंदा पालूस रसूल, जब हम पांचवें बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं, अभी हम वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे जहन में खुदा के पाक रूह ने डाला है कि खुदा की तवक्को क्या है। पांचवा बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानत बनो। दिस इज अ डिवाइन एक्सपेक्टेशन। खुदा की अल्लाह ही क्या है जी, ये तवक्को है उसके बेटों और बेटियों से। और आगे दूसरी आयत में कहता है, और मोहब्बत से चलो। ये क्या है जी, तवक्को है, ये ख्वाहिश है खुदा की, ये खुदा चाहता है। और आगे क्या लिखा है, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और पांचवें बाब को जब पढ़ते हैं तो क्या होती है जी शुरुआत, कि तुम्हें इस तरह जिंदगी बसर करनी चाहिए। सो चलना क्या है जी, अहले ईमान के लिए क्या है जी, ये खुदा की तवक्को है कि वो शरीरों की सलाह पर नहीं, अगर चलना है तो उन अल्लाही तमाम क्या है जी आयन की रहनुमाई में चले। और दूसरा नुक्ता क्या है जी, खड़े होना। खड़े होना को जब हम देखते हैं वो क्या है जी, खताई अल्लाक अतलाक। खताई अतलाक को जब हम देखते हैं, इसके पीछे मकसद क्या है जी, अहले ईमान के लिए खुदा की देखभाल और निगरानी, जो खताकारों की राह में खड़े नहीं होते। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, द स्टैंड इज डिवाइन एप्लीकेशन। ये वो अल्लाही इतलाक है जो खुदा चाहता है कि हम करें। हर बंदे और बंदी से खुदावंद खुदा की ये ख्वाहिश है। जब जबूर एक लिखवाया गया तो कहा गया जी मुबारक है वो आदमी। आदमी जो उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, दरअसल इसको जब हम अकबरानी में देखते हैं तो इसका तर्जमा क्या किया जा सकता है, मुबारक है वो खादम, खानदान, खामंद, बीवी, बच्चा, नौजवान जो शरीरों की राह पर नहीं चलता। सो ये क्या है जी, डिवाइन एप्लीकेशन है, यानी कि तुम्हारे चलने का, जिंदगी बसर करने का जो मकसद है उसके पीछे क्या है जी, तुम्हारा अतलाक क्या होना चाहिए कि खुदा की राह पर चलना है, ना कि ठट्ठाबाजों की, खताकारों की। और बैठने को जब हम देखते हैं तो ये क्या है जी, अल्लाह ही अलान है। अलान करते हैं ना जी, जैसे हम, मुझे याद है भाई सलीम यहां पर आए हैं, वो मारवाड़ी कबीले से तल्लक रखते हैं, बहुत दूर से आए हैं, और जब उनको हमने जो बच्चों की बाइबल मुकद्दस भेजी तो मैं अमान से कह सकता हूं कि जब बच्चों तक ये सब कुछ पहुंचा होगा तो उनके जहन में ये आयत चल रही होगी, जैसे बहुत दफा हम बाइबल मुकद्दस की तकसीम करने के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं जी क्या ही है खुशनुमा आपके कदम जो खुशखबरी की बशारत लेकर आए हैं। जी ऐसे है जैसे थके मांदे के लिए ठंडा पानी। सो बैठना क्या है जी, अल्लाही अलान। अल्लाही अलान क्या है जी, अहले ईमान की हैसियत जो ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता बल्कि खुदा की शरीयत में क्या करता है जी, सुकूनत करता है। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, द सिट इज अ डिवाइन प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन जैसे आसमान से फरिश्ते आए थे, गडरियों पर जाहिर हुए, जिसे क्या कहते हैं जी, आसमानी ग्रोह आकर कहती है जी, आलमे बाला पर होशियाना खुदावंद की तारीफ हो, मुबारक है खुदावंद के वो लोग जिनसे खुदा राजी है, उनके साथ खुदा की क्या है जी, सुलह है। ये क्या है जी, प्रोक्लेमेशन, खुशखबरी का इश्तहार कह सकते हैं, अलान कह सकते हैं इंग्लिश में, जिसे हम कहते हैं जी। अब और हम किसी के पास जाएं तो उसे क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने जो आखिरी हुक्म अपने शागिर्दों को दिया था वो क्या था जी, ग्रेट कमीशन, अरशादे आजम, ऐसा बयान के क्या किया जाए, जाओ जाकर सब कौमों को जो क्या है जी, गुमराही, दुख और कैद और हर तरह की अफसुर्दगी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो खाक में बैठे हुए हैं उनको जाकर बताओ कि जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। और ये क्या है जी, अल्लाही ऐलान है जो क्या किया गया था जी, पहली दफा पैदाइश 3 बाब में जब खुदावंद खुदा ने आदम और हवा और उस अज़्दहा के दरमियान गुफ्तगू करते हुए सजाएं सुनाते हुए उनसे कहा। और जो अल्लाही ऐलान था जी पैदाइश 3 बाब में खुदा ने शैतान के सामने कर दिया था, तो क्या हुआ था, क्या कहा था कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा, ये नहीं लिखा पैदा होगी, वो औरत की नजर से पैदा होगा। और अबलीस से कहा तू उसके सर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। ये क्या है जी, अल्लाही ऐलान है। खुदावंद खुदा ने पहले से, ये पहली नबूवत है बाइबल मुकद्दस में जो खुदा ने अपने बेटे की पैदाइश के तल्लक से बड़े वाजह तौर पर कर दी थी। वो औरत की नस्ल से पैदा होगा और अबलीस को वाजह कर दिया कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा, यानी कि उसे मसलूब किया जाएगा। और उसका नतीजा बयान कर दिया कि वो तेरे सर को कुचलेगा, कि कब्र और मौत और शैतान और गुनाह पर फतह पाकर वो कहेगा कि ऐ मौत तेरी कब फतह कहां रही, और ऐ शैतान तेरा डंग क्या है जी, खत्म हो गया दूसरे लफ्जों में। सो अल्लाही ऐलान, खुदावंद खुदा क्या कहता है ईमानदारों को कि मैं तुम्हारे लिए ऐलान करना चाहता हूं तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारा दर्जा क्या है, कि ठट्ठों बाजों की मजलिस में नहीं बैठना बल्कि क्या है जी, रासबाजों की जमात में तुम्हारा क्या है जी, मिराज है। इसे डिवाइन प्रोक्लेमेशन कहते हैं, और दूसरे लफ्जों में हम इसे कह सकते हैं चलना। चलना को जब हम देखते हैं वो क्या है जी, अल्लाही तवक्को, अल्लाही तवक्को है, इश्तियाक, इंतजार, उम्मीद, आस या पेश बन नबी बन बनी, क्या लफ्ज करेंगे जिसे, पेश बनी बन बनी बनी पेश बनी, चले आपको समझ आ गई, ठीक हो गया। आगे जी खड़ा होना, खड़ा होना अल्लाही इतलाक या अमल और रद्दे अमल, अमल और रद्दे अमल। जब जबूर नबीस में कहा गया कि मुबारक है वो जो शरारत की फौजों के पीछे नहीं चलता और खताकार जो खुदा की नाफरमानी करते हैं उनके साथ नहीं बैठता और जो क्या है जी मजाक उड़ाने वाले हैं उनके साथ खड़ा नहीं होता, तो दूसरे लफ्जों में क्या है जी, ईमानदारों हमें इसमें क्या करना होगा जी, अमल में रद्दे अमल का इजहार करना होगा। रद्दे अमल कब होता है, इंग्लिश में से कहते हैं एक्शन प्रोड्यूस रिएक्शन। अमल क्या करता है जी, रद्दे अमल को पैदा करता है कि वो क्या होगा, मुस्बत होगा या मनफी होगा। इसलिए खड़ा होना क्या है जी, अतलाक है कि हम कैसा अतलाक करेंगे, कैसा रद्दे अमल करेंगे जब हमने अमल की बात को सुना है। इसलिए आगे इस पर और सीखेंगे। और बैठना क्या है, अल्लाही ऐलान मनाती या इश्तहार है, खुदा के कलाम, खुदा के कलाम की जो अल्लाही इस्लाह और रसूलों के जरिया से हर ईमानदार मर्द और औरत के लिए रूहानी जिंदगी गुजारने के सबसे अहम मकासद की क्या है जी, तालीम देता है, ताकि हम दुनिया में रहते हुए बदकारों और शरीरों की सलाह के मुताबिक जिंदगी ना गुजारें बल्कि क्या करें, बल्कि क्या करें जी, खुदा की तवक्को के मुआफिक चलें। खुदा की तवक्को के मुआफिक चलें, और जिसके लिए क्या है जी, वाक, अल्लाही तवक्को। के अहले ईमान क्या करे जी, अपनी बुलाहट, अपने बुलावे, अपने इश्तियाक के मुताबिक जो खुदा उनके लिए रखता है जिंदगी बसर करें। खड़ा होना, कि अगर हम खड़े होते हैं तो हमारा खड़े होने का मकसद क्या है, उसके पीछे हमारा हदफ क्या है, हम क्यों खड़े हैं। अहले ईमान के लिए खुदा की देखभाल और क्या है जी, निगाहबानी जो दस्तियाब है। बैठना अलाही अलान है, यानी कि उसके साथ रफाकत रखना। बैठने का तल्लक पुराने अहदनामों में फिर मिलता है इस बात से, जब कोई गुलाम 7 साल के बाद आजाद किया जाता था तो उसे आजाद मर्जी में ये बात कही जाती थी कि तेरे सामने फैसला है, तू जा सकता है। और अगर उस गुलाम के मालक ने उससे सही रवैया इख्तियार किया हो, उसकी देखभाल की हो, उसकी हफाजत की हो, उसको सब कुछ बख्शा हो जो उसके लिए जरूरी है, तो वो गुलाम क्या करता है जी, फैसला करता है। और वो फैसला क्या है जी, वो अपना कान छिदवाता है, शहर के फाटक पर ले जाकर उसके कान को बिना जाता है। और जब बिना जाता है तो वो क्या है जी, सबसे ज्यादा पुराने अहदनामा में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, शमा। शमा 4,500 से ज्यादा दफा पुराने अहदनामा में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब क्या है जी, जब हम शमा को पढ़ते हैं वो शमा क्या है, अस्तिस्ना 6 बाब में मिलती है, सुन ए इसराइल, खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा है। और आगे क्या लिखा है, तू उसे अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रखना। शिनवा होना, सो कान जब छिदवाया जाता था, इसमें जो असर पाया जाता है बैठने में, यानी कि शिगिर्दियत में किसी के कदमों पर बैठकर सीखना। अहले ईमान की हैसियत क्या है, खुदावन के साथ रफाकत करना, ना कि ठट्ठेबाजों की मजलिस में बैठकर उन जैसे बनना। इसलिए ये है जी ज़बूर का तारफ। और पहली एक आयत को देखते हैं तो उसमें वो क्या कहता है जी, चलना, खड़े होना और बैठना। लेकिन खुदा का कलाम क्या करता है जी, ज़बूर नवीस को जब देखते हैं वो हमारे चलना यानी कि जिंदगी से शुरू करता है कि हम अपना चलना कैसा करते हैं ताकि हम खड़े हो सकें। और अगर हम खड़ा होना सीखेंगे तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे कि हमने अपनी बुनियाद कहां से शुरू की थी। इसलिए मेरे साथ एक और आयत देखें, ज़बूर पहला उसकी 2 और 3 आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, वो कहता है मुबारक बल्कि खुदावन की शरीयत में, ये किसको कहा गया है जी, वही बंदा जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, जो खड़ा नहीं होता, जो बैठता नहीं, जो क्या नहीं करता जी, चलता नहीं। वहां पर कहा गया है कि तुमने इनके साथ नहीं बैठना, इनके साथ नहीं चलना, इनके साथ खड़े नहीं होना। लेकिन अगर खड़े होना है, अगर बैठना है, तो अगर चलना है तो कैसे चलना है, जरा मेरे साथ देखें। बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनूदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बराबर होगा। इसमें 3 बातें वही है जो वो पहले दोहरा चुका है, लेकिन उसमें क्या है जी, उसने उसकी तरतीब को बुनियादी तौर पर शुरू कर दिया, जैसे पालूस रसूल शुरू करता है। देखना चाहते हैं कैसे, जब हम देखेंगे आगे चलकर, जरा देखें जी, लफ्ज बैठना को यहां पर हम जब देखते हैं वो किस में हमें मिलता है जी, खुशनूदी में। खुशनूदी में हमें ये लफ्ज मिलता है। खुशनूदी को जब हम इंग्लिश में तर्जमा करते हैं तो इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, डिलाइट इन द लॉर्ड। डिलाइट का लफ्ज जो तर्जमा किया गया है उर्दू जुबान में वो क्या है जी, खुशनूदी है। और खुशनूदी क्या है जी, वो कहता है कि खुशनूदी इस बात में है जो खुदावन में क्या रहता है जी, सीखता है, बैठता है और उसका तालिब इल्म होता है। मेडिटेशन किसे कहा जाता है और डिलाइट किसे कहा जाता है, जिसके लिए ज़बूर 37 उसकी 4 आयत में यही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, delight in the Lord and he will give you the desires of your heart। Psalms 37 verse 4. और उर्दू में उसका तर्जमा क्या किया गया है जी, खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। यहां पर क्या लिखा है, बल्कि क्या है जी, इसे में इसका ऐसा करेंगे, मुबारक है वो जो खुदावंद की शरीयत में क्या करता है जी, खुदावंद की शरीयत में जिसकी क्या है जी, खुशनूदी है। खुशनूदी यानी कि मसरूर होना, उसके साथ अटैच होना, उसके कदमों में बैठ जाना। नए नामों में यीशु मसीह ने से यूहन्ना की जील में कहा है, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी कर नहीं सकते। सो इसके लिए जब हवाला जात देखते हैं खुशनूदी के लिए कि इसका मतलब क्या है जी, खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनूदी है, उसमें मसरूर होना, उसके साथ जुड़ना, उस पर क्या है जी, उसका ध्यान लगा रहता है। जबूर 26 उसकी 4 और 5 आयत को जब देखते हैं तो खुदा का कलाम बड़े वाज़ह तौर पर इस बात को वजाहत से कहता है जो खुशनूदी के साथ तल्लक रखती है। और यहां पर जब हम 4 और 5 आयत को देखते हैं तो यहां पर लिखा है, 26वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं वो क्या है, मैं बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठा, मैं रियाकारों के साथ कहीं नहीं गया, बदकारों की जमात से मुझे नफरत है, मैं शरीरों के साथ नहीं बैठूंगा। खुशनूदी कि जो कुछ खुदा को पसंद है वो मुझे पसंद है। बहुत दफा ईमानदारों में जो मसला पाया जाता है, जो खुदा को पसंद है वो ईमानदारों को पसंद नहीं होता। यीशु मसीह हमारे लिए बड़ा जबरदस्त नमूना है। जब हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देता है, रूह कुद्दस कबूतर की सूरत में यीशु मसीह पर ठहरता है और आसमान से एक बड़ी ही जबरदस्त आवाज आती है, देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, यानी कि जिससे मुझे खुशनूदी है, जिससे मुझे राहत मिली है। So, इसलिए हमारी खुशनूदी क्या होनी चाहिए। यशुआ जब हम देखते हैं उसका एक बाप उसकी 8वीं आयत में खुशनूदी के लफ्ज को इस्तेमाल क्या किया गया है जी, इस बात से इस्तेमाल किया गया है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझको इसी का ध्यान हो, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू क्या होगा जी, खूब कामयाब होगा। सो खुशनूदी। और फिर इफिसियों 2 बाब में उसकी 6 आयत को जब देखते हैं तो वहां पर जो खुशनूदी है वो क्या है जी, मसीह के साथ तख्त नशीं होना। ये मसीहियों का क्या है जी, मकाम है। इफिसियों 2 बाब जब हम उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, खुदा की खुशनूदी, खुदा की खुशी, खुदा को राहत इस बात में है। जब हम इफिसियों 2 बाब उसकी 5 और 6 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया है कि ये तुम्हारा माजी था कि तुम रूहानी तौर पर मुर्दा थे, और उसको साथ ही वो क्या है जी, प्रेजेंट टेंस में पेश करता है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के लिए हमें बहुत जरूरी है, था थी थे इसका उसका उनका उन्हें उन्होंने यहां पर वहां पर कहां पर क्यों कब जब, कुछ जरूरी पढ़ना लाजमी है, ये हमारे लिए बहुत मुफीद है। सो यहां पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, जब 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 हम पढ़ते हैं तो जब क्या है जी, वक्त के साथ तायन रखता है। ये उर्दू ग्रामर में हमें सीखने को मिलता है कि जब कब की बात हो रही है और जब और कब क्या है जी, वक्त से तल्लक रखता है। जैसे मैं आपको कहता हूं, आपको याद है जब हम मुल्तान में थे, जान साहब याद है, जब हम मुल्तान में थे वहां पर हमने क्या किया जी, एक दिन की कॉन्फ्रेंस की थी। क्या आपको याद है जब हम मियां चन्नू में गजल मैरिज में सेमिनार कर रहे थे, तो क्या है जी, इसका वक्त के साथ तलक है। वो कहता है उस वक्त की बात है जब कसूरों के सबब से मुर्दा थे, यानी कि तुम्हारी हालत जिस्मानी तौर पर क्या थे जी, जिंदा थे, रूहानी तौर पर तुम खुदा से बेतलक और मुर्दा थे, लेकिन प्रेजेंट मौजूदा हाल में तुम्हारी हालत क्या है। वो कहता है थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, ये तुम्हारा माजी है। वो कहता है तुमको फजल से निजात मिली है, और आगे वो क्या कहता है, और मसीह में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों में मुकामों पर उसके साथ बिठाया। ये है जी प्रेजेंट टेंस में कि तुम माजी में तो उससे दूर थे, जुदा थे, हाल में तुम्हारा मुकाम, तुम्हारा दर्जा, तुम्हारी हैसियत क्या है जी, कि खुदावन की खुशनूदी इस बात में है कि वो तुम्हारी खुशनूदी हो जाए, और जब तुम्हारी खुशनूदी खुदावन की खुशनूदी होगी तो उसका नतीजा क्या होगा, वो तुम्हें अपने साथ तख्त नशीन कर देगा। और उसके बाद अगर देखते हैं अगला लफ्ज चलना, ध्यान, ध्यान, ध्यान को जब हम देखते हैं ये क्या है, इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जी, मेडिटेशन। मेडिटेशन को इंग्लिश का जो तर्जमा किया गया है वो क्या है जी, ध्यान है। ध्यान से मुराद जब हम इसे पढ़ते हैं जबूर नवीस में तो वो क्या कहता है कि खुदावन खुदा की शरीयत में क्या है जी, उसका क्या है जी, ध्यान है। किसका ध्यान है, जो शरीयत को सुनेगा, क्या कहता है, और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान है। लफ्ज ध्यान को जब हम देखते हैं तो अबरानी जबान में इसकी जो तस्वीर पेश की जाती है, जब कोई किसी बात को याद कर रहा हो या किसी बात को करना हो तो वो आगे पीछे सोचता है कि मैं ये करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, इसके पीछे मुझे क्या करना चाहिए। सो लफ्ज चलने के साथ क्या है, यहां पर वो उसको तशबीह देता है ध्यान से, और ध्यान में वो कहता है जिस बंदे और बंदी की क्या है जी, खुदावंद की शरीयत में दिन रात क्या है जी, तवज्जो है, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा जी, खुदावंद की शरीयत को पूरा करेगा। जिसके लिए जबूर 26 उसकी पहली 3 आयात को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा का कलाम हमें यूं कहता है, जबूर 26 मेरे साथ फिर देखें उसकी पहली 3 आयात को, और यहां पर खुदा का बंदा क्या कहता है, ऐ खुदावन मेरा इंसाफ कर क्योंकि मैं रास्ते से चलता रहा हूं, मैंने शरीरों के दरमियान अपना चलना, आगे पीछे सोचना, बोलना, बैठना सब कुछ किस तरह किया है जी, खुदावन खुदा तेरे खौफ में किया है। और वो क्या कहता है जी, ऐ खुदावन मेरा इंसाफ कर क्योंकि मैं रास्ते से चलता रहा हूं और मैंने खुदावन पर लाजिश तवक्कल किया है। और दूसरी आयत में क्या लिखा है, ऐ खुदावन मुझे जांच और अजमा, मेरा दिल व दिमाग, मेरे दिल व दिमाग को परख। और आगे क्या कहता है, क्योंकि तेरी शफ़क़त मेरी आंखों के सामने है, मैं तेरी सच्चाई की राह पर चलता रहा हूं। मुबारक है वो बंदा जो खुदावंद की शरीयत पर दिन रात क्या करता है जी, ध्यान करता है। जबूर 26 उसकी पहली 3 आयत और जबूर 119 उसकी पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखा है कि कैसे चलना है, जबूर 119 उसकी पहली आयत को जब पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा लिखते हुए कहता है मुबारक है वो जो कामल रफ्तार है, जो खुदावंद की शरीयत पर क्या करते हैं जी, अमल करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेटिंग। और इसे नए अहदनामा में पौलुस रसूल इस तरह बयान करता है, इफिसियों 4 बाब उसकी पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो इफिसियों 4 बाब उसकी पहली आयत में पौलुस रसूल कहता है बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं जिस बुलावे से बुलाए गए थे उसके मुआफिक चाल चलो। अबरानी का जो लफ्ज है मेडिटेशन से जिससे मुराद यानी कि किसी के दिल में कोई बोझ हो, किसी के कंधों पर कोई बोझ हो, वो इस बात को सोच के इस बात की फिक्र में क्या है जी, आगे पीछे चल रहा है, सोच रहा है, ध्यान कर रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और इफिसियों 4 उसकी 17 में वो क्या कहता है, इफिसियों 4 उसकी 17 में खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि खुदावन, इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावन में जताए देता हूं कि जिस तरह गैर कौमें अपने बहुदा ख्यालात के मुआफक चलती है, तुम आइंदा को उनकी तरह ना चलना। मुबारक है वो बंदा वो बंदी जो खुदावन की शरीयत पर दिन रात क्या करता है जी, ध्यान करता है। और तीसरा नुक्ता क्या है जी, स्टैंड, स्टैंड, स्टैंड को जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो क्या है जी, यहां पर जो मुनासबत की गई है तीसरी आयत में, पता है ज़बूर 1 की तीसरी आयत में, वो क्या है जी, दरख्त की मानद, दरख्त की मानद। क्या लिखा है, जब हम पढ़ते हैं वो उस दरख्त की मानद होगा। ये वो कौन है जिसे अभी अभी पहली आयत में कहा गया है, दयानतदार बंदा और बंदी। मुबारक का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है जी, जिसे हम लफ्ज लेते हैं जी जो अबरानी का, वो क्या है जी, मुबारक या खुश मजाज बंदा और बंदी वो है जो खुदावंद खुदा की रहनुमाई के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। सो यहां पर कहता है वो कौन है जी, मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो औरत, मुबारक हैं आप, मुबारक हैं आप, मुबारक हूं मैं अगर मैं क्या करता हूं जी, खुदावन की शरीयत के मुताबिक चलता हूं, खुदावन की शरीयत के मुताबिक अगर चलूंगा तो क्या है जी, वो मेरा कायम करने वाला है, वो आपका कायम करने वाला है। वो उस द्रव की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, जो कुछ वो करे सो बराबर होगा। इससे क्या मुराद है, ये तस्वीर है, अगर कोई जड़ वाला दरख्त हो क्या उसे कोई उखाड़ सकता है कहां से जी, उसे हिला सकता है जी। दरख्त अगर यहां पर एक बड़ा पीपल लगा हुआ है, अगर हम सब भी जाकर उसको टकरे मारते रहे तो वो हिल नहीं सकता, क्योंकि उसकी मजबूती क्या है जी, उसकी जड़ों में है। और उसकी जड़ों की मजबूती क्या है जी, जमीन के साथ कनेक्शन है, जहां से वो तमाम अपनी खुराक को हासिल करता है। आखिर पर खुदा का बंदा जबूर नबीस को लिखते हुए कहता है कि अगर तुम खुदावन में से अपनी कुव्वत ताकत और तमाम वो चीजें पाते रहोगे तो कोई तुमको हला नहीं सकता। तुम क्या किए जाओगे जी, कायम किए जाओगे, खड़े किए जाओगे। और जब कायम होंगे तो वो कहता है वो उस दरख्त की मानत होगा जो पानी की नदिया के पास लगाया गया। फिर चले मेरे साथ जबूर 26 उसकी 12 है, जबूर 26 उसकी 12 आयत में फिर हम देखते हैं जबूर 26 क्या है जी। फिर कहूंगा जबूर 1 का पूरा खुलासा है, जिसमें आप क्या देखते हैं, सिट वॉक स्टैंड, बैठना चलना और खड़े होना। और 12 आयत में क्या लिखा है, वो मेरे पांव हवार जगह पर क्या करता है जी, कायम करता है, कायम रखता है। जबूर 26 उसकी 12 आयत, अगर आप पूरे जबूर का खुलासा देखना चाहते हैं, जबूर 26 की पहली 3 आयात क्या है जी, चलना है। जबूर 4 जो जबूर 26 की 4 और 5 आयत को देखते हैं तो वो क्या है जी, बैठना है। जबूर 26 उसकी 12 आयत को देखते हैं तो वो क्या है जी, खड़ा होना है। और इसमें क्या है जी, वो मेरे पांव हमवार जगह पर कायम, मेरे पांव हमवार जगह पर कायम है, मैं जमातों में खुदावंद को मुबारक कहूंगा। दूसरे लफ्जों में नए अहदनामा में इसकी तस्वीर क्या है, मुबारक है वो अकलमंद बंदा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जब पानी मी बरसा, आंधी आई, तूफान आई तो उसको कुछ जर ना पहुंचा, लेकिन जब देखते हैं उस बंदे को, उस बंदी को जिसने अपना घर रेत पर बनाया, उसके लिए वो क्या कहता है, मी आया, पानी चढ़ा और वो कायम ना रहा, वो तबाह हो, बर्बाद हो गया। ये क्या है जी, तस्वीर है ईमानदार की और गैर ईमानदार की। इसलिए यर्मिया 17 बाप उसकी 7-8 आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कल करता है, वो उस दरख्त की मानद है जो बियाबान में लगाया गया है, वक्त पर फलता है, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। और इफ़सियों 6 बाप उसकी जब हम 9-10 आयत को देखते हैं तो वहां पर वो क्या कहता है, रूहानी जंग में उन तमाम बसन के सांडों के सामने खड़े होना और कोई हमको गिरा नहीं सकता। अगर हम इस आयत को अपनी जिंदगी में वाकई तौर पर जानते हैं, इफ़सियों 6 बाब उसकी 9-10 आयत में क्या लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदावन के सब हथियार बांध लो। और क्या लिखा है जी आगे, क्या लिखा है 10 आयत में, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में क्या रह सको जी, कायम रह सको। सजबूर 1 उसकी 1 आयत इफ़सियों के पूरे खत का क्या है जी, खुलासा है। इसलिए वापस जाएंगे जबूर की तरफ, जबूर की तरफ वापस जाएंगे, क्योंकि जबूर क्या है जी, बड़ा जबरदस्त ये सच है। जब मैं इसका मुतालिया कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि खुदावंद इसे बयान किस तरह करूं, ये तो बहुत ही गहरा सच है जिसका कनेक्शन आगे पीछे ऊपर नीचे ये इतना गहरा है। इसके लिए हिकमत और दनाई दे ताकि जितना मैं खुश हूं कि इस सच को जानकर मुझे खुशी हो रही है, जब इसको बयान किया जाए तेरे लोगों को समझ आए, वो अपना चलना, अपना खड़ा होना, अपना बैठना जान सके कि वो मसीह में कौन है, किसके साथ उनकी रूहानी जंग है और उनका जमीन पर तर्ज हजात गुजारने का मकसद क्या है। इसलिए जबूर 1 में वापस चलेंगे और आगे क्या देखते हैं जी, वो इस बात को बयान करता है, खड़ा होना, खड़ा होना को जब हम देखते हैं फिर वापस जाकर तो आपको तफसीलन कुछ हवाला जात देना चाहता हूं। खड़ा होना से मुराद है इसलिए कि शरीर अदालत में कायम ना रहेगा। ये कौन सी आयत है जी, जबूर की 4, 5, 6 आयत। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसी की मानद है जैसे हवा उड़ा ले जाती है, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और खताकार साधकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंत साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह क्या होगी जी, नबूद हो जाएगी। यहां पर वो पहले कहता है मुबारक है वो बंदा जो खुदावंत की शरीयत के मुआफिक खुदावंत के तमाम इंतजाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता है और आगे जाकर कहता है कि अगर कोई नहीं करेगा तो उनका अंजाम क्या है, जो करेगा उसका अंजाम क्या है, वो जो दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदिया के पास लगाया गया है। इसलिए बहुत जरूरी है इसका उसका था थी क्यों कहां कब कैसे और जब और कब का मतालिया करना, क्योंकि बाइबल मुकद्दस को हम एक छोटे से जुमले से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यीशु मसीह ने इस बात की बड़ी अहमियत बयान की है कि जब उसके ऊपर सवाल उठाया गया था तो उसने कहा कि मैं शरीयत को मंसूब करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि आसमान और जमीन टल जाएगी लेकिन खुदा के मुंह की बातों में से एक भी शोशा नहीं टलेगा। जिसे अबरानी जबान में हम अपने तर्जमे में क्या कहेंगे जी, कि एक भी मद शद पेश दाल रे जीम कोई भी है क्या है जी, वो ऐसी नहीं गिनी जाएगी कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है। उसका इसका उनका उन्हें जहां कहां कब तब थी था थैया थैया सब अहम है। सो इसलिए वो कहता है था थैया यीशु का कलाम समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसे क्या है जी, रिदम जानना, बेकायदा नहीं चलना बल्कि बाकायदा चलना है। इस ढोलक को अगर ये वाली लेकर आए जरा जी, ये आगे, शुक्रिया जी। ये ढोलक है, मरे हुए जानवर की क्या है जी, स्केन है, लेकिन अगर इसे बेकायदा बजाएंगे तो किसी को मजा नहीं आएगा। मसीही जिंदगी भी ऐसी है, अगर हम बेकायदा चलेंगे बगैर कायदे के समझे बगैर इत्तला किए तो क्या होगा जी, हमारी आवाज क्या होगी। पौलुस रसूल कहता है वो बंदा वो बंदी क्या है जी, अगर वो आदमी और फरिश्तों की जुबाने बोले वो ठनठनाता पीतल और झनझनाती चांच है, अगर वो अपना सब कुछ गरीबों को दे दे, अगर वो अपना बदन जलाने को दे दे, अगर उसका ईमान इतना बुलंद हो कि वो पहाड़ों को हटा दे, अगर वो नबूवत करे, अगर वो सब कुछ करे और उसमें जो बुनियादी नुकता है अगर इतलाक मोहब्बत ना हो, सब कुछ क्या है जी, बेफायदा नहीं, बेफायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, बेकायदा है, बेकायदा। कायदे की समझ आ गई कि कौन सा कायदा चल रहा है। खड़े होना, इसलिए शरीर अदालत में कायम नहीं रहेंगे। जो क्या करेगा जी, यीशु के इस दिए हुए कलाम को ज़बूर नवीस कहता है नहीं मानेगा, कायदे से नहीं चलेगा, उसका हाल क्या होगा, ये शरीर अदालत में कायम नहीं रहेंगे। और कायम रहने का मकसद क्या है, जब अदालत की जाएगी तो वो दाहिनी तरफ खड़े नहीं होंगे जहां पर भेड़े होंगी, वो बाईं तरफ खड़े होंगे जहां पर बकरियां इकट्ठी की जाएंगी। जबूर 5 उसकी 5वीं आयत में, जबूर 24 उसकी 3 और 4 आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कौन इस मुकद्दस जगह पर खड़ा होगा, वही जिसके हाथ क्या है जी, साफ और पाक है। मलाकी 17 उसकी, जब मलाकी उसका 3 बाप उसकी 17 से 18 आयत को देखते हैं तो वहां पर भी हमें लिखा है कि वो साधकों को क्या करेगा जी, शरीरों से जुदा करेगा। मत्ती 13 बाप में वो क्या कहता है, कड़वे और मीठे दानों की मिसाल देते हुए क्या कहता है, बड़े जबरदस्त सच को बयान करता है। मेरे साथ निकाले मत्ती 13 बाप उसकी 34 से 37 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर खुदा का बंदा क्या कहता है, ये अदालत की तस्वीर है 5वीं आयत में कि जब अदालत होगी तो क्या होगा जी, शरीर उसमें खड़ा नहीं रह सकता, उसके कायम करने वाला उसे कायम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद क्या है जी, रेत के ऊपर रखी गई है और इसलिए वो क्या है जी, कायम नहीं होगा। मत्ती 13 बाप जब हम उसकी 34वीं आयत से देखते हैं तो वहां पर खुदा का बंदा मत्ती रसूल यहां पर यूं कहता है, 34वीं आयत को जब देखते हैं तो वो कहता है ये बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कही और बगैर तमसीलों के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया है वो पूरा हो, मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बनाए आलम से क्या थी जी, पोशीदा रहे। तो यहां पर जब हम कड़वे दानों की मिसाल को देखते हैं, सो ये सारी पोशीदा बातों को देखते हैं तो 37वीं आयत से जब हम शुरू करते हैं तो यीशु मसीह बयान करता है, क्योंकि उसके शिगिर्द जानना चाहते हैं। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शिगिर्दों ने उससे के पास आकर कहा खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे, हमें समझ नहीं, हमारे ऊपर से गुजर गई यीशु। और 37वीं आयत में उसको जवाब में कहता है अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम यानी कि यीशु मसीह है। ठीक हो गया जी, जो बीज बोने वाला है वो क्या है, यीशु अल मसीह है। और उसके बाद वो कहता है जी खेत दुनिया है, खेत दुनिया है और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठट्ठाबाजों की मजलस में नहीं बैठता और क्या है जी, खताकारों के साथ खड़ा नहीं होता। इसलिए वो कहता है कि अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद है और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं, और ये क्या है जी, जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जला जाते हैं, ये क्या है जी, अदालत है, शरीर अदालत में कायम नहीं रहेंगे। वो उस अदालत में कायम नहीं रहेंगे, वो आग में जलाए जाएंगे। और आगे क्या लिखा है, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो दुनिया और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डालेगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रासबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे, जिनके कान हो वो सुने। रूह कलीसिया से क्या फरमाता है, सात पैगाम मकाशवा के दो और तीन बाब में। सो यहां पर इन हवाला आपको नोट कर सकते हैं। मत्ती 25वें बाब में क्या है जी, भेड़ों और बकरियों की तमसील दी गई है 32वीं आयत से और 46वीं आयत में। दानियल 12 बाब उसकी 1-3 आयत में क्या लिखा है, मैं अपने लोगों के लिए खड़ा होऊंगा और क्या किया जाएगा जी, बथेरे खाक से उठेंगे और अदालत की जाएगी। उस रोज क्या होंगे जी, मुकद्दसीन जो ईमानदार होंगे वो क्या है जी, कायम किए जाएंगे। आए उस आयत को पढ़े, बड़ी जबरदस्त आयत है। दानियल 12 बाब उसकी 1-3 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पर खुदा का बंदा क्या कहता है, उस वक्त मीकाएल मुकर फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा। खड़ा होना अदालत के लिए क्या है जी, उठेगा। और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा, ये क्या है जी, दूसरी आमद है, जिसे क्या कहते हैं जी, 7 साला मुसीबत का दौर। और इब्तदाई अकवाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ अभी तक नहीं आई और ना ही होगी, जो क्या होगी जी, उन 7 सालों के दौरान होगा, जिसे मुसीबत का दौर कहते हैं। कलीसिया के उठाए जाने के बाद आसमान पर से क्या है जी, वो तमाम बातें जो नबूवतें हैं वो पूरा होगी। और इस 7 साल के अरसा के दौरान क्या होगा जी, शरीर अबलीस सब कुछ करेगा कि गुमराही पैदा करे, और उसके बाद यीशु मसीह वापस आएगा ताकि अदालत करे। उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक का नाम, हर एक जिसका नाम किताबे हयात में लिखा है, रहाई पाएगा। बारीक है वो आदमी। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को क्या कहा था, इस बात से खुश ना हो कि बद्रोहे तुम्हारा कहना मानते हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में कहां पर है जी, आसमान पर लिखे हुए हैं। और क्या लिखा है जी, यहां पर है जी, मुर्दों की क्यामत, जो खाक में सो रहे हैं, जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अबदी के लिए और बाज रसवाई और जिल्लते अबदी के लिए। शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे। और यहूदा एक बाप उसकी 14 और 15 आयत क्या है जी, दूसरी अदालत की तरफ इशारा है, जैसे जबूर 1 में क्या कहा गया है जी, शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसी की मानत है। और मत्ती 3 बाब में यीशु मसीह ने क्या कहा था, यूहन्ना ने जब उसे कहा कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद एक आने वाला है जो तुमको रूह और आग से बपतिस्मा देगा और उसका छाज उसके हाथ में है, वो गेहूं को तो अपने खत्ते में और भूसी को आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। शरीर ऐसे नहीं जो क्या है जी, वो ऐसे हैं कि भूसी की मानत है जो हवा के साथ उड़ जाते हैं। यहूदा एक बाप जब उसकी हम 14वीं आयत को, एक ही उसका बाप है, 14 और 15 आयत को देखते हैं तो यहां पर वो क्या कहता है, और उनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7 पुश्तों में था ये पेशन गोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया, ठीक हो गया जी, ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं, उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उनकी मुखालफत में किए की हैं कसूरावर ठहरे। ये क्या है जी, अदालत है जिसके लिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, खड़ा होना। हमारा कायम करने वाला क्या है जी, डाडा है, जिसे कहते हैं अय्यूब की किताब उसका 19वां बाब उसकी 25वीं आयत को पढ़ते हैं तो वो कहता है, मैं जानता हूं। आज की इस कॉन्फ्रेंस का करने का मकसद क्या है? जबूर नबीस के मुताबिक हम जाने कि मैं जानता हूं कि जब मैं उसमें काम किया गया हूं तो कोई मुझे घिरा नहीं सकता, जब मैं उसके साथ बैठूंगा तो कोई मेरी जुमायत को बदल नहीं सकता, जब मैं उसके साथ चलूंगा तो मेरी रफ्शें उसे पसंद आएंगी। और क्या होगा? मुबारक है वो आदमी, वो बंदा, वो बच्चा, वो औरत जो क्या है जी, खुदावंत की शरीयत में उसकी खुशनूदी है, दिन रात उस पर उसका ध्यान है। और क्या लिखा है? वो उस दरख्त की मानद होगा जिसका पत्ता भी मुरझा नहीं सकता। यीशु ने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए यह है जी, खड़ा होना, बैठना, ना खता का साधकों की जमात में। जमात में क्या है जी? ये साधकों की जमात है। ये क्या है जी? साधकों की जमात है। और साधकों की जमात में शरीर बैठ नहीं सकता। हमारी पोजीशन इन क्राइस्ट, हमारा मुकाम यीशु मसीह में। कितना टाइम हो चुका है जी? कहीं मैंने टाइम तो नहीं खो दिया? बैठना, वाज 12 बाब उसकी 12 से 14 आयत में क्या लिखा है? बैठना किसे कहते हैं? बैठना किसे कहते हैं? नहूम 1 उसकी 7, दूसरा करिन्थियों 10 बाब। मैं चाहता हूं कुछ हवाला जात में से पढ़ ही लें। कोई निकाल ले जी वाज 12 बाब उसकी 12 से 14 आयत मेरे साथ पहले निकाले, और उसके बाद कोई नहूम 1 उसका 7 आयत को निकाल ले जो जल्द बुलंद आवाज से पढ़ सकता है, ताकि जो रिकॉर्डिंग को सुने उनको भी सुन सके। तब तक मैं वहां पर पहुंचता हूं। वाज उसका 12 बाब, किसने निकाल दिया जी वाज की?
बहुत किताबें बनाने की इंतहा नहीं और बहुत पढ़ना जिस्म को थका देता है।
हाँ जी, 13वीं आयत आपके लिए पढ़ देता हूँ। सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम यह है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, के इंसान का फर्ज़े कुली यही है। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद हर एक फेल को और हर एक पोशीदा चीज को, खा भली हो खा बुरी हो, अदालत में लाएगा। दो अदालतें होंगी, ईमानदारों की और गैर ईमानदारों की। ईमानदारों को क्या होगा जी? वो उनके तमाम कामों का बदला देगा। गैर ईमानदारों को क्या है जी? उनका बदला कुछ भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? रोना, दांतों का पीसना और हमेशा की आग। दूसरा ग्रंथियों 10 बाब उसकी 5 बाब उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हम सब खुदावंद के तख्त के सामने हाजिर किए जाएंगे। ये ईमानदारों की अदालत है, और हर एक को उसके काम के मुआफिक क्या मिलेगा जी? बदला मिलेगा, खा उसने बदन में किए हो, खा उसने रूह में। और उसके बाद क्या है जी? यूहन्ना 10 उसकी 14 और 15 आयत क्या कहती है? 14 आयत और 15 आयत कहती है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। साधकों की जमात में खुदा जानता होगा कि साधक कौन है और शरीर कौन है। जैसे इस वक्त मलाकी नबी के सहीफा के मुताबिक यादगारी का दफ्तर लिखा गया, यादगारी का दफ्तर लिखा जा रहा है कि साधक इकट्ठे हुए। साधक क्या है जी? वो क्या है जी? वो उस बेल की मानत है। साधकों का इतिहाद क्या है जी? जबूर 133 के मुताबिक कि क्या ही खुशी की बात है जब बाही बाहम मिलकर इकट्ठे हो जी। ऐसे है जैसे हारून की दाढ़ी से बहता हुआ तेल। साधकों की जमात में शरीर कायम नहीं रहेंगे। फिर 27वीं और 28वीं आयत में भी यीशु मसीह कहता है, वो मुझे जानती हैं और मैं बाप को जानता हूं, बाप मुझे जानता है, इसलिए कोई उनको मुझसे छीन नहीं सकता। दूसरा तिमोथियुस उसका 2 बाब उसकी 19वीं आयत, जो कोई निकाल ले तो जरा जल्द पढ़ दे। दूसरा तिमोथियुस 2 बाब उसकी 9 उसकी 19वीं आयत, हालेलुया, तो भी खुदावंत की बुनियाद क्या है जी? मजबूत बुनियाद कायम है। और यहां पर जो सीखने वाली बात है, साधकों की जमात, वो क्या है जी? वो उनको जानता है जिन पर उसने मोहर की है, जो उसके अपने हैं। मकाशवा 22वां बाब उसकी 12 और उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं। वहां पर क्या होगा नए यरूशलम में?
देख, मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के बावजूद देने के लिए अजल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घटने वाला वह रहेगा। मुझे यीशु ने अपने फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, जो कोई चाहे आपने हयात से मुक्त रहे।
हालेलुया। ये क्या है जी? तस्वीर है साधकों की जमात में। शरीर कायम नहीं रहेंगे, वो नहीं बैठ सकते। जैसे 12 कबीलों के साथ सिर्फ उन्हीं को हिस्सा मिलेगा, यीशु ने जिनके लिए कहा क्या कि यीशु अगर हमने तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ा है तो हमें क्या मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि उन 12 कबीलों के साथ बैठने की जगह और उसके साथ 100 गुना ज्यादा, और उसके साथ क्या है जी? हमेशा की जिंदगी। साधकों की जमात में शरीर कायम नहीं रहेंगे। और आपको बताना चाहता हूं आपकी बाइबल की बड़ी खूबसूरत बात। आपकी बाइबल की शुरुआत कहां से होती है जी? शादी से होती है। बाइबल का अहतमाम कहां से होता है जी? शादी से होता है। पदेश 3 बाब में खुदा ने आदम और हवा की शादी की कि वो खावंद और बीवी हो। और जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो खुदावंद खुदा अपने बेटे को जो दुल्हा है और उसकी दुल्हन जो कलीसिया है उसकी शादी करा के क्या करेगा? उस बिजनेस को, उस काम को, उस मकसद को जो बागे अदन में शुरू किया था, जो अधूरा रह गया, जो पूरा नहीं हो सका, जो पहला आदम नहीं कर पाया, जिस पहले आदम ने नाफरमानी के फल का मजा चखा तो मौत और रूहानी जुदाई आई। और नए अहदनामा में दूसरे आदम यीशु और मसीह को देखते हैं जिसने फरमा बरदारी का फल खाकर कहा गसमनी बाग में, ए बाग मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, उसको क्या करेगा हमारा दुल्हा बनाएगा। सो बाइबल की शुरुआत शादी से होती है, और बाइबल की जो आखिरी किताब है वो शादी से खत्म होती है। इसे मैं इस तरह कहूंगा जी, तखलीक की शुरुआत शादी से होती है, और उस तखलीक को जब नया यरूशलम, नई दुल्हन, सब कुछ नया होगा, उसकी शुरुआत भी शादी ही से होगी। और वहां पर हम सब मौजूद होंगे कि हम अपने मालक और खालक का क्या लिखा है जी, उसका चेहरा देखेंगे, हमारी आंखों में आंसू नहीं होंगे, हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि हम फल के नूर की मानद चमकेंगे। सो ये था तारफ जी जबूर 1 का बैठना, खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारी रफाकत चलना, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह क्या हो जाएगी जी? नाबूद हो जाएगी। सुबूर 139 उसकी पहली 2 आयत में क्या लिखा है जी? ऐ खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और परख लिया, देख तू मेरा बैठना और उठना जानता है, तू मेरे ख्यालों को दूर ही से समझ। यर्मिया 9 उसकी 10 में क्या लिखा है? मालौन है वो आदमी जो खुदावंद पर नहीं बल्कि आदमी के बाजू पर भरोसा करता है, वो उस रेगिस्तान में रत्मा की मानद होगा, और क्या होगा जी? वो बेफल रह जाएगा, उसकी राह बर्बाद हो जाएगी, वो कभी भी बरकत नहीं पाएगा। पदेश 18 उसकी 16 और 19 में जब खुदावंद इब्राहिम के पास आता है और कहता है कि मैंने शोर सुना है सदूम और अमूरा के गुनाहों का, मैंने उनकी आवाज को सुना है, उनकी बदी मेरे हजूर पहुंची है और मैं क्या करूंगा, उसे बर्बाद करूंगा। उनकी राह, राह से मुराद क्या है जी, चलना। सदूम और अमूरा का जो तौर तरीका है जिंदगी गुजारने का, जो क्या है जी, उन्होंने तरीका अपनाया है, वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, वहां पर जाऊंगा। और वहां पर इब्राहिम और खुदा के दरमियान में क्या होती है जी, गुफ्तगू होती है। खुदा, तू जो इंसाफ करने वाला खुदा है, क्या तू गैर इंसाफ करने वाला खुदा है? क्या तू रास्त नारास्तों के साथ रास्तबाजों को भी फना करेगा? खुदा कहता है अच्छा। और वहां पर इब्राहिम को हम देखते हैं, अगर 40 मिल जाए, अगर 30 मिल जाए, अगर 20 मिल जाए, अगर 10 मिल जाए, तो वहां पर क्या है जी, 10 रास्तबाज भी नहीं मिले। और जब हम देखते हैं पदायश 18 बाप उसकी 20 और 21 24 और 25वीं आयत में सारा वाक्या, वहां पर खुदा क्या करता है, अपने फरिश्तगान को भेजता है कि सदूम और अमूरा को क्या करे जी, अदालत करे और आसमान से आग और खंदक की झीप उन पर बारिश हो और उनके तरीकाकार को तबाह बर्बाद कर दे। सदूम और अमूरा का जो तरीकाकार था वो बड़ा भयानक था। वो ना सिर्फ बुतप्रस्त थे, ना सिर्फ नाफरमान थे, वो क्या थे जी, जानवरों के साथ हम अगोशी करते थे। उन्होंने यहां तक के खुदा के फरिश्तों के साथ बदी करने की क्या की जी, हबस रखी। याद है इब्रानियों 13 बाप उसकी पहली आयत में क्या लिखा है, ब्रादराना मोहब्बत में कायम रहो और क्या रहो जी, जहन में जुमला आ रहा है जी, फरमा बरदार के साथ साथ क्या है जी, मेहमान परवाज, या ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है 13 बाप की पहली दो आयत में। ब्रादराना मोहब्बत में, ब्रादराना मोहब्बत कायम रहे, मुसाफर परवरी में परवरी से गाफल ना रहो, क्योंकि इसी वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। इब्राहिम ने फरिश्तों को खिलाया, लूत ने अपने घर में फरिश्तों को बुलाकर सैर किया, खाया पिया, और लूत के साथ जो वहां के शहरी थे वो क्या करना चाहते थे, इनको निकाला, हम इनसे हम अघोषी करना चाहते हैं। वो बड़े ही भयानक लोग हो चुके थे कि उनकी राह खुदा उन खुदा ने देखा कि नाबूद करना, तबाह करना लाजमी है। इसलिए यह ज़बूर एक का और इफ्सियों का खुलासा। सो आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं और फिर हम इफ्सियों के तारफ की तरफ चलेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, ये सब कुछ यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता हूँ और मेरी दुआ है कि इसके वसीला से तमाम तेरे बंदों और बंदियों को बरकत मिली होगी, यीशु के नाम में आमीन। यीशु मसीह के नाम की, यीशु के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं।